प्रातः क्लास चल रहा था 25/4/1966 सोमवार को पांचवे पेज के मध्यांश में बात चल रही थी। ये अंतिम जन्म है, विनाश सामने खड़ा है, तो जरूर पतित दुनिया का विनाश हो, पावन दुनिया तो बनाना पड़े ना। इसलिए बाबा कहते हैं काम महाशत्रु है, यही तुमको पतित बनाने वाला है, महाशत्रु, इन पर जीत पहनो। अभी जो पावन बनेगा वो ही पावन दुनिया में जाएगा, और नहीं बनेगा तो नहीं जाएगा। तो इसमें हम समझाते हैं, इसमें कोई भी हो पावन तो सबको बनना पड़े, बने तो अच्छा है, उनको और ही पॉइंट धारणा चाहिए। समझो किसकी स्त्री है, वो कहती है मैं तो पावन बनूंगी। धन्य हो देवी, भले पावन बनो। देखो सन्यासी पावन बनते हैं तो उनको सब माथा टेकते हैं, तो हम क्यों न पावन बने, और वो भी पावन सदगति के लिए बनते हैं। हम भी क्यों न सदगति के लिए पावन बने, तो पावन की बात। तो सन्यासी घर बार छोड़ते हैं, क्यों छोड़ते हैं, विकार में न जाने के लिए। और हम तो घर बार नहीं छोड़ते हैं, घर में रहते हुए निर्विकारी बनते हैं। बाप ने कहा है कमल फूल के समान घर गृहस्थ व्यवहार में पवित्र हो, सन्यासियों मिसल कायर बन करके न भागो। कायर किसे कहा जाता है, युद्ध भूमि में कायर किसको कहा जाता है, जो युद्ध भूमि से छोड़ करके चले जाते हैं, भाग जाते हैं, तो उनको कायर कहा जाता है। अब यहाँ बाबा ने कौन सा महाभारत गृह युद्ध बताया है, तीर तलवार का युद्ध बताया है क्या, कौन सा युद्ध है, तोप बंदूक का युद्ध है, है? मिसाइल्स का युद्ध है, उन्होंने तो शास्त्र में मूसल दिखाई दिए कि मूसलों से युद्ध किया। यहाँ कौन सा युद्ध है? विकारों से युद्ध है। और विकार कब आता है? जंगल में आता है या घर गृहस्थ में रहते हैं तब आता है? साथ साथ रहते हैं, साथ साथ सोते हैं तब आता है या अलग अलग रहते हैं तब आता है? एक जेल में रहे और दूसरा घर में रहे, पति जेल में रहे पत्नी घर में रहे, तो विकार आवेगा? युद्ध किससे करेंगे? युद्ध होगा? होगा नहीं होगा? बाबा कहते हैं मैंने कोई हिंसक युद्ध नहीं कराया, मैं तो माया का युद्ध कराने के लिए आता हूँ। हिंसक युद्ध तो उन सन्यासियों ने, पंडितों ने, आचार्यों ने दिखाई दिया है। तो कायर नहीं बनो, घर गृहस्थ को छोड़ के न भागो, सन्यासियों मुआफिक भागो नहीं। यहाँ रह करके पवित्र बनो। कहाँ रह करके? घर गृहस्थ में रह करके पवित्र बनो। घर गृहस्थ में रह करके पवित्र बनने का ऊंचे से ऊंचा सैंपल भक्ति मार्ग में क्या दिखाया है? अरे भक्ति मार्ग में कोई यादगार दिखाई है? है क्या? ये बंद कर देना। यादगार दिखाइए है? कोई कहता है लक्ष्मी नारायण, और क्या बताया? हाँ, ऊंचे से ऊंचा यादगार दिखाया है और सारी दुनिया में दिखाया है। ज्यादा से ज्यादा तादाद में दिखाया है। कौन सा मंदिर है, कौन सा यादगार है? हैं? शिव बाबा का यादगार, स्त्री और पुरुष का चिन्ह साथ साथ दिखाया गया है। अब ऐसे कोई विकारों पर जीत होती है क्या? होती है? हैं? होती है या नहीं होती है? कैसे? उन तथाकथित ब्रह्मा कुमारियों से पूछो, हो सकती है? कैसे हो सकती है? अरे बुद्ध योग से हो सकती है या नहीं हो सकती है? हैं? बुद्ध योग से हो सकती है। कर्म इंद्रियों से कर्म करो और बुद्ध योग उपराम हो जाए कमल फूल के समान। तो बोला भागो नहीं, यहाँ बनो। कहाँ है? घर गृहस्थ में रहते हुए बनो, उन सफेद कपड़े वालों, रंगीन कपड़े वाले सन्यासियों के मुआफिक नहीं। सन्यासी हद में ही है या बेहद में भी है? बेहद ब्राह्मणों की दुनिया में सन्यासी है? है क्या? है? कौन है? है? सन्यासियों को तो बिचारों को मालूम भी नहीं है क्या? बिना सामने खड़ा हुआ है, अभी पाते पतित दुनिया से पावन दुनिया, और विनाश भी होता है। ये तो अभी बाबा ने आकर के समझाया है कि विनाश सामने खड़ा है, पावन बनो। और पावन बन करके पावन दुनिया का मालिक बनो। छोटे बड़े राजाएं कब बनते हैं? है? विजय पाते हैं तब बनते हैं या हार खाते हैं तब बनते हैं? वो तो पाई पैसे का युद्ध है। उस युद्ध से दुनिया में कोई भी विश्व का महाराजा नहीं बन सका। और बाबा क्या बनाने आए हैं? हैं? विश्व का मालिक बनाने आए हैं। यथा राजा तथा प्रजा सब अनुभव करेंगी। जैसे घर में बाप होता है, कोई कारखाना होता है, बाप भी कहेगा मेरा कारखाना, और बच्चा भी कहेगा मेरा कारखाना। तो वहां नई दुनिया में ये शर्त है बाबा की कि जो घर गृहस्थ में रह करके पावन बनेंगे, हिम्मत का काम है या अर्जुन की तरह पीछे हटेंगे? है? अर्जुन पहले अध्याय में क्या करता था, क्या दिखाया है? है? भागता था। भागने वालों को विश्व की बात सही नहीं मिलने वाली है, इनको मिलेगी। है? जो युद्ध में विजयी होंगी। तो पावन दुनिया का मालिक बनो। कैसे मालिक बनो? दो बातें हैं। कर्मयोग, कर्म भी करना है कर्म इंद्रियों से, और फिर योग माने बुद्धि का योग भी लगाना है। इतना पतित बने हो तो पतित बनते समय 63 जन्म में बुद्धि योग मेरे से लगाया क्या? किससे लगाया? है? देहदारियों से योग लगाया। तो विश्व के मालिक बने। कोई भी हिटलर, नेपोलियन, मुसोलिनी विश्व के मालिक बने बने या हार खा गए? सब हार खा गए। तो जो इतने 63 जन्म पतित बने हो, देहधारियों को याद करते करते, देह के अंगों को याद करते करते, इतना दिन जो पतित बने हो, वो पतितपना तुम्हारा इस कर्म योग से खलास हो जाएगा। और कोई उपाय नहीं है। हम और कोई शिक्षा देते ही नहीं है। क्या शिक्षा देते हैं? कठिन योग है या सहज राज योग है? है बस पावन बनने के लिए इतना ही बताते हैं। अभी स्त्री पावन बनना चाहती है, पुरुष नहीं बनते? क्यों नहीं बनते? है? अरे कोई कारण होगा? होगा या नहीं होगा? क्या है? जोर से नहीं बोलते हैं? हाँ, जो भी पुरुष चोला है वो अपनों का अपना विकारी सुख भोगने का वर्षा नहीं छोड़ेंगे, दुष्ट युद्ध करेंगे। दुर्योधन बनेंगे, दुष्ट शासन करेंगे, दुशासन बनेंगे। तब क्या करना है? इसका रिजल्ट क्या होगा? झगड़ा बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। वो बोले वाह, मैं पावन बन करके अपनी सदगति करूं और तुम अपनी सदगति नहीं कर सकते हो तो जाओ। के पक्ष में क्या बोला था मुरली में? हिस्ट्री में ये बात प्रसिद्ध है। पहले राजाएं निकले थे, कब है? तब राजाएं निकले थे जब माया भी तमो प्रधान नहीं हुई थी और मनुष्य भी तमो प्रधान नहीं हुए थे। द्वापर में रजो प्रधानता होती है। उस समय नहीं कहेंगे दुर्योधन दुशासन। तो राजाएं निकले थे रानियों को छोड़ दिया था और अब क्या होगा? पुरुष अपना वर्षा नहीं छोड़ना चाहते तो क्या होगा? अब रानियां निकलेंगी जो राजाओं को क्या करेंगी, छोड़ देंगी। क्या बोलेंगी, वाह मैं पावन बन करके अपनी सदगति करूं और तुम नहीं कर सकते हो तो जाओ। अपने लिए दूसरी ले लो। परंतु वो कहने वाली भी मजबूत चाहिए कि लुंजुम बुंजुम है, कहने वाली में देह अभिमान नहीं होना चाहिए, नहीं तो देह अभिमान आता है और मोह की कीड़ियां बन जाती हैं। तो मुझो नहीं, बाबा तो समझाते हैं ना, इस समय में किस समय में है, संगम युग में। संगम युग की क्या पहचान, क्यों कहते हैं इसको संगम युग, क्यों नहीं कहते सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, काहे का संगम, आत्मा का परमात्मा के साथ संगम। संगम है परमपिता परमात्मा के साथ आत्मा का, तो क्या मैं वैश्या बनूंगी है? संगम कैसे होता है, है? भगवान आते हैं संगम में तो संगम कैसे होता है, सब आत्माएं परमात्मा बाप की क्या है, है? सजनी है। तो जो सजनी बनी एक बाप की वो एक के साथ संबंध निभाएंगी, जो गीता में बोला है प्रियं प्रियाया रहसिरो देव सोढुम, श्लोक गाते हैं तुमेव माता च पिता तुमेव तुमेव बंधु च सखा तुमेव तुमेव सर्वम मम देव देव। तो उस सर्वम में पति पत्नी का संबंध परमात्मा का जुटता है आत्माओं के साथ या नहीं जुटता है, जुटता है। तो बोले कि ऐसी वैश्या बनने के बदली से तो फिर मैं बासन मान करके और अपना पवित्र रह करके वर्षा ले लूंगी। पच्चीस चार छियाछठ की वाणी का छठा पेज पीछे, जरूर अगर कोई ऐसी होगी बोलेगी अच्छा ऐसे है, हम अभी चिट्ठी लिखते हैं, बाबा हमें कहां भी अभी नौकरी दिलवा दो, कोई की भी घर में मैं बर्तन मांजूंगी। परंतु अपवित्र नहीं बनूंगी, निकल भी पड़ती है परंतु, परंतु क्या मोह भी रहता है ना बंदरियों का, निकल तो पड़ती है, फिर क्या होता है? बच्चों को याद करने लग पड़ती है। पवित्रता के लिए पति को छोड़े, फिर बच्चे याद पड़े, फलाना याद पड़े। क्योंकि जब बाप के बनते हैं तो माया अच्छी तरह से पकड़ती है। क्यों? माया को कौन सी मिर्ची लगती है? अरे वो जानती है ये युद्ध तो मेरे से है ना, ये युद्ध हमारा किससे है? माया से युद्ध है। तो जट माया बुद्धि में घुस पड़ती है, जट मोह सता लेता है। क्योंकि मोह भी बहुत है। किसको है? माताओं को मोह बहुत है। क्या बोला है इस संबंध में? माताएं अगर मोह की जीव पर जीत पाले तो समझो विजयी हो गई। बहुत बंदरियां हैं जो चाहती हैं कि हम बाबा से वर्षा ले लें, पर बच्चों में प्यार, बच्चियों में प्यार अभी तलक भी हमारे पास ऐसी है। कब की बात बताई है? 66 की बात बताई। अभी तो कितने साल हो गए है? तो 50 से भी ऊपर साल हो गए। अभी तक भी हमारे पास ऐसी है मोह के कारण मरी हुई है, इतना कि धारणा कुछ भी होती नहीं है। इनमें तो बाबा क्या कहे, बा मेरा तो एक दूसरा न कोई। बोले मैं बलिहारी जाऊंगी और जीते जी बलिहारी जाऊंगी। अभी कोई जावे ना। अच्छा तुम बच्चों को सब अच्छी अच्छी पॉइंट्स तो सुनाते हैं, अभी नीचे सर्विस करने जाते हैं, कोई तो कहते हैं वहां सर्विस क्या होगी? अरे सर्विस तो सभी जगह होगी। छोटे छोटे गांवड़े में जाते हैं बाहर वाले, जिन गांवों में छोटी सर्विस है क्या? गांवों की आबादी तो बहुत है, परंतु सर्विस करने वाले नहीं है। बेहद के गांवड़े और बेहद के शहर कौन से होते हैं? गीता पाठशालाएं हैं बेहद के गांवड़े, और बड़े बड़े सेंटर्स हैं शहर। तो बाबा बैठ करके बनाते हैं सर्विस के लिए, जाओ ऐसी सर्विस करोगे तो तुम्हारा नाम बहुत बाला होगा। सन्यासी आए दैया तो वह मचाएंगे या नहीं मचाएंगे हैं? माँ बाप के बाद दादा के दिल पर चढ़ेंगी। अगर दिल पर नहीं चढ़ेंगे तो क्या काम का? अच्छा बाबा की समझ में नहीं आई कोई बात, अच्छा चलो बच्ची टोली लाओ। बाबा समझाते हैं, सन्मुख बैठ करके अच्छा समझ करके बाहर में निकल जाते हैं, वही फिर अच्छी सर्विस करते हैं। क्या कहा? मुरली तो सुन दे, लेकिन मुरली सुनने के कितने प्रकार है? एक तो थर्ड क्लास मुरली सुनते हैं, कागज की मुरली सुनते हैं, पढ़ते हैं, वो है थर्ड क्लास मुरली। दूसरी सेकंड क्लास मुरली है, टैप रिकॉर्डर से सुनते हैं। जैसा जैसा जितना जितना बाबा ने बोला सारा सुनते हैं। कटिंग की बात नहीं, तीसरा है सन्मुख मुरली सुनना। तो बोला जो सन्मुख बैठ करके अच्छा समझ करके बाहर में निकल के जाते हैं वो फिर अच्छा समझाते हैं। अच्छा सुबह को कोई को अच्छा टाइम नहीं मिलता है तो रात में ही सही, काम होता है करके 8 घंटा तो 1 घंटा जा करके वहां हम सर्विस करके आते हैं। पांच सात इकट्ठे होकर के भी जाते हैं। बोलो आओ, हम तुमको बाप से वर्षा कैसे मिलता है? विश्व की बादशाही का वर्षा कैसे मिलता है वो हम आपको बैठ के समझावें। तब टाइटल मिलता है क्या? हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे, काश्य याद के तेज को कहा जाता है। ऐसा याद का तेज इंद्रियों में भर जावे जो हमारे बुद्धियोग को तोड़ न सके, तो ऐसे रास्ता बतावे। बोले मैं भी थोड़ा जल्दी बंद करता हूं, अभी थोड़ा और जास्ती बताता हूं। आ?
राज क्या है? क्या है बाबा ने पूछा, आज क्या है? गुरुवार है, सोमवार है ना? झूठ बोलता है ना? ये बाबा कितने बजे आते हैं? साढ़े छह। अभी आगे से सवा छह बजे आएंगे। कल से सवा छह बजे आएंगे। मीठे मीठे सर्विसेबल बच्चे, कुछ न कुछ तो सर्विस करनी चाहिए। बाबा ने समझाया था ना, नेपाल में बलि चढ़ाते हैं। कहाँ? नेपाल। वेद की दुनिया का नेपाल भी है। ब्राह्मणों की दुनिया में वेद का नेपाल भी है या नहीं है? क्या है? उसके बारे में कुछ बोला है? मुरली में ही बोला है या अव्यक्तवाणी में भी बोला है? है 2004 के आसपास अव्यक्तवाणी में बोला था, बाप दादा तुम बच्चों को नई दुनिया की सौगात देते हैं तो जरूर नई दुनिया का फाउंडेशन पड़ा होगा या नहीं पड़ा होगा? तो बोला नेपाल में बलि चढ़ाते हैं, बड़े बड़े जो होते हैं वो बड़ी तलवार लेकर के बड़ी बलि चढ़ाते हैं। कौन सी तलवार है? है बड़ी ज्ञान की तलवार जिनके पास है वो बड़ी 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 बलि चढ़ाते हैं। बड़े बड़े जो पाढ़े होते हैं ना, भैंसा, जो भैंस के बच्चे होते हैं वो बड़े बड़े एक धक से उनको काट देते हैं। उससे छोटे होंगे तो वो रीढ़ या बकरा उठाएंगे, भेड़ बकरी तो छोटी होती है, बकरा भी छोटा होता है भैंसा के बराबर, भैंसा के मुकाबले। और छोटे बच्चे होंगे, बहुत छोटे बच्चे होंगे तो उनके हाथ में बत्तख देते हैं काटने के लिए, चिड़िया। वो बच्चा कौन? बच्चा, बच्चा माने वो बच्चा बुद्धि क्या करेगा, हाथ से पकड़ करके ऐसा करेगा, अभी उस छोटे बच्चे में बेचारे में क्या दम रखा है? बेसिक नॉलेज का बच्चा होगा या एडवांस नॉलेज का? बेसिक का होगा। तो उससे भी ऐसा कराते हैं। कैसा है? जैसा ऊपर समझाया वैसा। तो ये भी तुम्हारी सर्विस की बात है, तो तुम समझ लो कि ये कोई डिसर्विस की बातें हैं। विकारों को बढ़ाने वाली बातें हैं, विकारों को बढ़ाने वाली बातें हैं, या इस दुनिया से हमेशा के लिए खत्म करने वाली बातें हैं? है? कोई नहीं बोलता। ये तुम्हारी सर्विस की बात है, डिस सर्विस की बात नहीं है। तो रोज कुछ न कुछ सर्विस जरूर करनी चाहिए। समझाना है तो बहुत सहज, समझाना है। क्या समझाना है? सिर्फ कर्मेंद्रियों से कर्म करो एक ही काम करो या दो काम करो? है? क्या दो काम? कर्मेंद्रियों से कर्म करो और बाप को याद करो। हमारा जो पुरुषार्थ है वो प्रवृत्ति मार्ग का पुरुषार्थ है। हम हैं भी प्रवृत्ति मार्ग के, ऐसे नहीं कि सिर्फ कर्म इंद्रियों से कर्म करना है। नहीं, कर्म इंद्रियों से कर्म करो और बुद्धियोग से याद करो। तो समझाना है कि बाप को याद करो, नहीं भी याद करेंगे तो भी मौत सामने खड़ा है। विनाश का समय है। बाप कहते हैं मुझे याद करो, क्या कहते हैं? है? हाँ, ये शर्त है। मामेकम नमस्कुरु, सर झुका के नमन करना है या बुद्धियोग से याद करना है? मुझे को याद करो। विभिचारी याद नहीं आनी चाहिए। और बरसा ले लो, सभी आत्माओं का बाप तो एक ही शिव बाबा है। समझा ना? क्योंकि बाबा हम भी बाप के घर के रहने वाले हैं। कहाँ के हैं? बाप का घर कहाँ है? हम भी बाप के घर के रहने वाले हैं। बाबा कहते हैं तुम ऐसे करेंगे तो मेरे पास चले आवेंगे, आगे नंबर तुम्हारा लग जाएगा। और विनाश के टाइम पर जो दुनिया भर के दुख आने वाले हैं, उन सब दुखों से क्या होगा? है? छूट जावेंगे। कैसे? अरे विजय माला, विकारों पर विजय पाने वालों की माला बनेगी या नहीं बनेगी? बनेगी। तो जो रुद्रमाला के मण के जो जन्म जन्मांतर के स्वभाव संस्कार से पुरुष स्वभाव के है वो भी क्या होगा, रुद्रमाला के मण के भी विजय माला में ऐड कर लिए जाएंगे और विजय माला में ऐड कर लिए जाएंगे तो कहाँ राज्य करेंगे है, सतयुग तो बाद में आएगा, पहले स्वर्णिम संगम युग आना है, दिल्ली में राजधानी स्थापन होनी है पहले या पहले सतयुग आ जाएगा है, दिल्ली में राजधानी स्थापन होगी और तुम पवित्र बन करके मेरे पास आ जाएंगे। सभी आत्माओं का बाप तो एक ही शिव बाबा है, ये समझा ना, क्योंकि बाबा हम भी वहां के रहने वाले हैं। बाबा कहते हैं मेरे पास चले आएंगे, तो फिर बाद में हम तुमको स्वर्ग में भेज देंगे। अभी अभी ये बातें कहने में रामचंद्र कोई तकलीफ है क्या है? रामचंद्र का ही नाम क्यों ले लिया? ये बातें कहने के लिए रामचंद्र को ही क्यों याद किया है? रामचंद्र ही पहले ये बात कहना शुरू करेगा क्या? अरे रामचंद्र का नाम लेने का कोई मतलब है? यही मतलब है कि हे रामचंद्र तुम पिछले जन्म में तो क्या हुए थे, फेल हो गए थे। उस समय क्यों फेल हो गए थे हैं? क्योंकि उस समय इन बातों का पूरा ज्ञान नहीं था कि मंदिर में जो लिंग है वो किसकी यादगार है, किसकी यादगार है? शिव बाबा की है, शिव की यादगार है लिंग। और बिंदु किसकी यादगार है? सोमनाथ के मंदिर में जो गुजरात में है आज भी यादगार, उस पुराने मंदिर में लाल पत्थर का लिंग था और बीच में बिंदु के रूप में हीरा जड़ा हुआ था सफेद, तो वो हीरा किसकी यादगार और लिंग किसकी यादगार? लिंग साकार की यादगार और हीरा ज्योति बिंदु शिव की यादगार। तो बोला हे रामचंद्र ये बातें समझाने में तुमको कोई तकलीफ है क्या है? बेचारा जानता है पिछले जन्म में तो पिटाई कर करके मार के लाश भी फेंक दी, पता ही नहीं चला लाश कहाँ चली गई। क्यों ऐसे क्यों हुआ, क्यों फेल हो गया? क्योंकि उस समय ज्ञान पूरा नहीं था, न शक्ति चक्र का ज्ञान था, न पूरे झाड़ का ज्ञान था, न सीढ़ी का ज्ञान था। अभी तो 84 के सीढ़ी का पूरा ज्ञान बुद्धि में बैठा। बोलो रामचंद्र तुमको समझाने में कोई तकलीफ है क्या? अरे बुद्धि में बात बैठी या नहीं बैठी? माना पहले ये बात बुद्धि में किसको बैठेगी? रामचंद्र को बैठेगी या नीले पीले सफेद कपड़े वाले सन्यासियों को बैठेगी? रामचंद्र को बैठेगी, क्योंकि रामचंद्र को इंट्रोड्यूस करके मुरली में बोला है, तुम बच्चे हो खास जन्म जन्मांतर के प्रवृत्ति मार्ग के पक्के, औरों को तो बुद्धि में नहीं बैठी। ये रामचंद्र भी तो सेंटर संभालते हैं ना, क्या धंधा है उनका? है पिछले जन्म में भी वही धंधा और अगले जन्म में भी वही धंधा। अच्छा बाबा की बुद्धि चकराई गई ब्रह्मा बाबा की, तो बोलते हैं अच्छा मीठे मीठे सर्व से उन बच्चों के प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग, मैं जाता हूँ। शिव बाबा ने नहीं छोड़ा, फिर पकड़ लिया। तो देखो यहाँ भी बच्चों को आकर के साथ सीख लेना चाहिए। सब सीख लेना चाहिए यहां, माने कहां है? अरे अभी पिछले वाक्य में क्या बोला है? बोला ना ये भी तो सेंटर संभालते हैं ना, कौन? रामचंद्र। तो यहां भी बच्चों को आकर के साथ सीख लेना चाहिए। भी क्यों लगा दिया? यहां भी क्यों लगाया है? अरे यहां संगम युग में सिर्फ कृष्ण वाला या वाली आत्मा का ही पार्ट है सेंटर संभालने का, या राम वाली आत्मा का भी पार्ट है सेंटर संभालने का? इसलिए बोला यहां भी बच्चों को आकर के साथ सीख लेना चाहिए। अच्छा हम रोटी पकाते हैं, क्या करते हैं? रोटी पकाते हैं। ये क्या बीच में रोटी घुसड़ दी? ये भी कोई हद और बेहद की बात है? रोटी भी कोई बेहद की बात हो सकती है क्या? हो सकती है? कैसे? रोटी तो भोजन है ना? वो रोटी जो है मुख से, मुख की इंद्रिय से खाई जाती है, ताकत देती है या नहीं देती है? ताकत जिसमें आती है उसको खुशी आती है या नहीं आती है? हैं? आती है। वो तो हद की रोटी हो गई, जिसे अनाज कहते हैं। अनाज है शरीर का भोजन, और पानी है उस भोजन को पकाने का साधन। कोई रोटी ही खाता रहे पानी न पिए तो गर्मी चढ़ जाएगी या नहीं चढ़ जाएगी? चढ़ जाएगी, वो तो हद की बात हो गई। जहां आत्मा के बेहद भोजन की बात है और वो जन्म जन्मांतर की बात है। आत्मा का भोजन क्या है? याद। रसगुल्ला खाया है तो याद आती है, आती है ना? हैं? ये तो रसगुल्ले का स्थूल मिसाल हुआ, उससे भी ज्यादा कोई ऐसी चीज दुनिया में है जो बहुत याद आती है, हैं? क्या प्यार याद आता है ना? जो प्यार है ना वो याद आता है ना, हैं? और इतना याद आता है कि मरते दम तक पीछा नहीं छोड़ता। स्त्री को पुरुष का अंग याद आता है तो कौन सा जन्म मिलता है? पुरुष का जन्म मिलता है। और पुरुषों को क्या याद आता है? स्त्री का अंग याद आता है तो कौन सा जन्म मिलता है? अंत मते तो गते। तो वो रसगुल्ला तो बहुत छोटी चीज है, और ये तो ऐसा भोग है जिस भोग में भगवान भी जो भगवान कहते हैं लोग किसको कहते हैं? निराकार को कहते हैं या साकार को भगवान कहते हैं? हैं? भक्ति मार्ग में तो राम को, कृष्ण को, शंकर को, देहधारियों को भगवान कह लेते हैं ना? ये नहीं समझते, क्योंकि जो भी शब्द होते हैं उनके कोई अर्थ होते हैं या नहीं होते हैं? हैं? होते हैं। धनवान का क्या अर्थ है? हैं? जिसके पास बहुत धन हो। बलवान का क्या अर्थ है? बहुत बल हो। और बलवान का क्या अर्थ है? चल, भाग्य कहाँ बोला? भाग्य बोला क्या? भगवान बोला। भगवान ने क्या? जानते तो सब हैं। तो अर्थ हुआ कि भगवान के पास जितनी भगे हैं और दुनिया में इतनी भगे किसी के पास नहीं हो सकती, इसलिए उसका नाम भगवान पड़ गया। क्या काम किया? ऐसा कोई यादगार है? हैं? हैं? अरे फिर भूल गए? जन्म जन्मांतर माथा टेकते रहे, नाक रगड़ते रहे और अभी भूल गए? अरे शिव बाबा का मंदिर यादगार है कि नहीं? क्या कहते हैं मुरली में? तुम सब क्या हो? पार्वतियां हो, पार लगाने वाली हो। तुम सब माने कौन? तुम सब का मतलब क्या हुआ? है आत्मन? अच्छा, तुम सब पार्वतियां, ये स्त्रियों के लिए कहा है या पुरुषों के लिए कहा है? आत्मा है, आत्मा है तो पुरुष दुर्योधन दुशासन आत्मा है नहीं है? है कि नहीं है? आगे बढ़ के बैठ गए, आत्मा है, हम भी हैं। तुम सब पार लगाने वाली क्या हो? पार्वतियां हो। किसको पार लगाती हो? बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा दुनिया में कौन डूबता है? अरे 500-700 करोड़ मनुष्य हैं, दुनिया में सबसे जास्ती कौन डूबता है? अरे कोई डूबता है कि नहीं? सब नंबर वाले के एक ही जैसे हैं। कौन है? अरे अरे सबसे जास्ती पतित कौन बनता है? राम वाली आत्मा। दुनिया में सूरज ग्रहण पड़ता है, भक्ति मार्ग में कहते हैं वेदान तो छूटे ग्रहण। वो समझते हैं कि सूरज को ग्रहण लग गया, वास्तव में तो स्थूल सूरज को भी कोई परछाया नहीं पड़ता विकारों का, पड़ता है। सूरज ग्रहण तो तब होता है जब एक तरफ सूरज, बीच में चंद्रमा आ जाता है और दूसरी तरफ पृथ्वी होती है। सूरज का चंद्रमा के द्वारा परछाया पड़ता है पृथ्वी के ऊपर, तो लोग क्या समझते हैं? है सूरज ग्रहण हो गया। अरे सूरज तो आग का गोला है, ज्ञान अग्नि का, योग अग्नि का गोला है, उसके ऊपर परछाया पड़ सकता है क्या किसी का? नहीं पड़ सकता, विकारों का परछाया नहीं पड़ सकता। ये बात यहाँ भी लागू होती है, ब्राह्मणों की दुनिया में भरपूर भक्ति मार्ग चल रहा है, नंबरवार ज्ञानी है, नंबरवार भक्त हैं। क्या समझते हैं? है? क्या समझते हैं? अरे संगम युग में सबसे जास्ती पतित कौन है? जिसे सूर्यवंशी का भक्ति मार्ग में टाइटल दिया गया है वो सूर्य पतित है, या चंद्रमा का परछाया पड़ता है, या चंद्रवंशियों का परछाया पड़ता है? है चंद्रमा का परछाया पड़ता है। कैसे? जो बात आज मुरली में समझाई गई वो बात ब्रह्मा की बुद्धि में बैठी थी। है वो क्या करते थे? वो कीचड़ में रह करके कमल फूल समान पवित्र रहने को क्या समझते थे? कहां तक समझते थे? है? अरे नहीं, वो चंद्रवंशियों में सबसे श्रेष्ठ आत्मा है, लेकिन सूर्यवंशी नहीं। ज्ञान प्रकाश का, योगाग्नि का गोला नहीं। कुछ न कुछ समझने में कमजोरी थी, इसलिए वो कन्याओं माताओं को गोद में लेते थे और उसको क्या समझ लिया? गोद में लेने को है, यही माया का युद्ध है। लेकिन नहीं, गोद में लेने से इंद्रियों पर विजय हो जाती है? हो जाएगी? नहीं होगी। फिर भी पतित के पतित रहते हैं। अगर इंद्रियां पावन बनी होती, राजयोग के आधार पर इंद्रियों पर विजय पाई होती शरीर रहते रहते, तो पूजा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए थी। ब्रह्मा की पूजा नहीं होती। तो बोला ये सब बातें यहां आकर के सीख लेनी चाहिए। कहां है? अरे जहां रामचंद्र के सेंटर्स हैं, जहां जहां रामचंद्र सेंटर्स संभालता है वहां नंबर वार समझाने वाले भी मिलेंगे। ओम शांति।